ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि है अर्थात हमें पूरा निश्चय है कि शिव बाबा अवतरित होकर के नई सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। उसी निश्चय के आधार पर हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं और हमको अनुभव भी है। और बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, लेकिन फिर भी निश्चय में हम नंबरवार हैं। परसेंटेज हो जाती है कभी कभी। एक है 100% निश्चय, यानी पूरा भरोसा है हमें बाबा पर, बाबा की श्रीमत पर, ड्रामा पर। लेकिन कभी कभी जब समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो तन की हो, मन की हो, धन की हो, संबंधों की हो, और उसके कारण अगर हम हलचल में आते हैं तो फिर हम कहेंगे कि हमारे निश्चय में परसेंटेज है। 100% निश्चय है तो हम अचल, अटल, अडोल रहते हैं, सहज परिस्थितियों को पार करते हैं और विजयी हो जाते हैं। तो जैसे कहा, एक बल एक भरोसा। तो एक तो बाबा से हमें अनेक बल मिले हैं, माना उस एक से हमें अनेक बल मिले हैं जो हमारी शक्ति है, जो हमें विजयी बनने में मदद करते हैं। तो वो बल है ज्ञान का बल, योग का बल, धारणा का बल, पवित्रता जो हमारी मुख्य धारणा है, वो बल भी बहुत बड़ा बल है। और फिर है सेवा का बल, ऐसे ही साइलेंस का भी बल है, ज्ञान का बल जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उसे हम नॉलेज इज पावर कहते हैं या नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। बाबा ने हम बच्चों को वो ज्ञान दिया जो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है, यानी वो ज्ञान किन्हीं वेदों शास्त्रों में नहीं है। आज भी बाबा ने क्या कहा कि वो क्या है, सिर्फ कथाएं हैं। लेकिन बाबा तो हमें पूरे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी हमें बाबा बना देते हैं। तो ज्ञान ही हमें जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है। वैसे तो 21 जन्म तक हम जीवन मुक्ति में होंगे, लेकिन वर्तमान संगम युग में भी ज्ञान से ही हम कई कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये समय कलयुग का समय है, दुख अशांति का समय है। लेकिन हम बाबा के बच्चे वो दुख अशांति से ज्ञान के बल से मुक्त हो सकते हैं। व्यर्थ संकल्प विकल्प से मुक्त होते हैं, विकर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हम अशुद्ध भोजन जो खाते थे या व्यसन लेते थे ज्ञान में आने से पहले, उससे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि समझ आ जाती है कि मैं ही देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ, पावन बनने वाली आत्मा हूँ। हम कैसे ऐसा भोजन स्वीकार कर सकते हैं? व्यसनों से जो आनंद का अनुभव करते थे, तो परमात्मा की याद से जो सच्ची शांति मिली, सच्चा आनंद मिला, उससे वो व्यसन अपने आप छूट गए। ऐसे ही संघ के बंधनों से बाबा ने हमें मुक्त किया और परमात्मा के संघ का रंग हमें लग गया। तो अपने आप ही दुनिया के व्यर्थ संघ से हम किनारे हो गए। जो प्रकृति और वातावरण का प्रभाव होता है, उन प्रभावों से भी बाबा ने हमें ज्ञान के बल से मुक्त किया है। प्रकृति के पांचों तत्वों के राज को हम जानते हैं, अभी तमो प्रधान है और सतयुग में वो सतो प्रधान तत्व होते हैं, उसकी प्राप्ति क्या है और इसकी अप्राप्ति क्या है। गृहस्थी से बाबा ने हमें ट्रस्टी बना दिया, तो जो जिम्मेवारी का बोझ था, उस जिम्मेवारी के बोझ के बंधनों से भी हम मुक्त हुए। तो वर्तमान जीवन में भी हम ये मुक्ति का अनुभव करते हैं। बाबा ज्ञान अमृत कहते हैं, ज्ञान स्नान हम रोज करते हैं, तो रोज ज्ञान सुनते सुनते जो ज्ञान समाता है उसे हम जीवन में यूज करते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे लिए समस्याएं रहती ही नहीं है, जो दुनिया के लिए समस्याएं हैं वो हमारे लिए है ही नहीं। आज हम आत्मा के ज्ञान को यूज करते हैं, तो आत्मा का ज्ञान हमें आत्मा भाई भाई की दृष्टि देता है, जो हमारी शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। तो उससे हम जाति धर्म भाषा ये जो भी भेदभाव हैं, इनसे हम ऊपर उठ गए। हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं और आपस में सभी भाई भाई हैं। और इसी दृष्टि से हम काम विकार पर भी विजय पा लेते हैं, क्योंकि स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। परम धाम में भी हम पवित्र हैं और पूरे दो युगों तक जब हम देवी देवता थे तो पवित्र थे, वो स्मृति से समृद्धि आ गई। तो एक आत्मा का ज्ञान ही हमें कितना न्यारा देह के बंधनों से मुक्त कर देता है। तो कितना हम उसे यूज करते हैं, वो ज्ञान का खजाना हमारे पास है, वो अस्त्र शस्त्र हमारे पास है। हाँ, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र को अगर हम यूज नहीं करते तो क्या होता है, वैसे ही जंग खाते हैं और समय पर फिर वो काम नहीं करेंगे। मेरे पास धन है और उसे हम अलमारी में बंद करके रखते हैं या बैंक में रखते हैं, सिर्फ खुश होते हैं कि हमारे पास धन है और समय पर हम इसे यूज नहीं करते, तो वो होते हुए भी हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। तो जितना हम ज्ञान को यूज करते जाते हैं अपने जीवन में, उतना ही हम विजयी बनते हैं, उतना ही हमारी अवस्था अचल अडोल रहती है। कि योग का बल बाबा से सर्व संबंधों का हमें अनुभव कराता है, योग माना ही संबंध। बाबा से जो समीपता का हम अनुभव करते हैं, समानता का हम अनुभव करते हैं, वो संबंधों के आधार पर। और बाबा ने हमें ऑफर किया है संगम युग पर, ऑफर किया है ना, भक्ति में तो हम गा ही रहे थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन संगम युग पर हम सचमुच बाबा से इन संबंधों का अनुभव करते हैं, वो माता पिता की पालना का हम अनुभव करते हैं। बाबा माता पिता है, जब हम बाबा के साथ हैं तो जैसे बच्चे जब अपने माँ बाप के साथ होते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, बेफिक्र होते हैं, उनको पता है कि हमारी जिम्मेवारी माता पिता की है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हमारी चिंता करेंगे। तो बाबा के साथ हम हैं तो हमारे मन की स्थिति भी ऐसी होती है कि हम बिल्कुल निसंकल्प हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, बेफिकर हो जाते हैं। से बाबा ने कहा बेफिकर बादशाह। और बाबा हमारा रक्षक भी है, संरक्षक भी, जैसे माँ बाप बच्चों के रक्षक भी होते हैं। तो हम सबके जीवन के ये अनुभव हैं कि जितना हम बाबा पर भरोसा रखते हैं, बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, जब वो समय होता है बाबा के ऊपर हम अपनी चिंताएं छोड़ देते हैं, तो कैसे बाबा हमें मदद करते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन के अनेक अनुभव हैं, पर कुछ एक दो जो यूनिक हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहले भी मैंने कभी क्लासेस में सुनाया है, हो सकता है कई भाई बहनों ने ही सुना होगा। तो एक तो अनुभव, दोनों ही ये एरोप्लेन से संबंधित हैं। तो एक तो हम एक बार करेबियन टूर पर थे, करीब 2014 की बात है। करेबियन कंट्रीज जो जिन्हें हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, साउथ अमेरिका की तरफ है वो, तो वो देशों पर सेवा में थे। और वहां से वापसी के समय, वहां सूरीनाम एक देश है जो भारत जैसा ही है, तो सूरीनाम से हमें भारत वापस आना था। तो उसमें दो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, पहले वहां से ट्रिनिटाड आना था, फिर ट्रिनिटाड से लंदन आके फिर भारत आना था। तो जब हम वहां एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो जब टिकट दिखाई बोर्डिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी टिकट पर टिकट नंबर नहीं है, और टिकट नंबर नहीं है इसलिए इस प्लेन की टिकट आपकी नहीं मानी जाएगी। तो मेरे को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, वैसे तो वहां की बहन ने ही टिकट बुक कराई थी, हमने तो नहीं कराई थी, पर उस वो टिकट में दो तीन टिकट थी, तो उसी टिकट से मैंने पहले भी ट्रेवल किया था, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने उनको बताया कि इस टिकट से तो मैंने ट्रेवल किया है, तो उसने कहा कि लेकिन इस पर टिकट नंबर नहीं है, हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको, आपकी बुकिंग नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे तो भारत जाना है, और यहां से मेरी वो कनेक्टिंग फ्लाइट है। मैंने समझाया उनको कि मेरा तो जाना बहुत जरूरी है, और नहीं तो पूरे भारत तक की जो ट्रिप है वो तो बहुत महंगा टिकट होता है, और अगर ये फ्लाइट नहीं मिली तो नेक्स्ट वाली फ्लाइट जो है वो नहीं मिलेगी, कनेक्शन ही नहीं मिलेगा। फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा चलो ये नहीं मानते हो, आप नया बुक कर दो। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो प्लेन फुल है, इसमें एक भी सीट खाली नहीं है, तो आपको नई टिकट भी नहीं मिल सकती। फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा कोई और फ्लाइट जाने वाली है नजदीक में? तो उसने कहा कि नहीं, यहां से पूरे दिन में सिर्फ एक ही फ्लाइट जाती है ना, वो छोटा एयरपोर्ट था, तो एक ही फ्लाइट जाती है और ये फ्लाइट फुल है। फिर मैंने उसको पूछा कि मेरा तो जाना बहुत जरूरी है, आप मुझे बताओ क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है? तो उसने कहा कि ये हो सकता है कि आप इंतजार करो, और जब बोर्डिंग पूरा हो जाएगा और अगर कोई पैसेंजर नहीं आता है या कोई कैंसिल करता है, तो उसकी सीट हम आपको दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वेट करूंगी। और मैं, वो अमृत वेले का टाइम था, तो मैं बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा भारत कैसे पहुंचाना है वो आप जानो, ये गलती बहन से कैसे हो गई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि टिकट तो उन्होंने बुक कराई है, लेकिन अब जो भी है किसी भी तरह से आप ट्रिनिटाड पहुंचा दो। फिर बाबा की याद में हम बैठ गए, वो सब में 2 घंटा लगा, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लंबा टाइम लगता है। तो वहां 2 घंटा में बैठी थी, और लास्ट में जब उनकी बोर्डिंग पूरी हो गई, तब वो बहन मेरे पास आई, क्योंकि मैं सामने ही बैठी थी। तो उसने कहा कि आप लकी हो, एक पैसेंजर नहीं आया है, और वो सीट आपको मिल जाएगी। और मैंने वो सीट लिया, मतलब वो टिकट बुक किया, और मैंने बाबा को दिल से बहुत बहुत थैंक्स किया। तो जब बाबा के ऊपर छोड़ दिया कि बाबा आप जानो कैसे पहुंचाना है, तो बाबा अपना कार्य कैसे करता है वो बाबा ही जानता है। तो इतना मुश्किल टाइम था मेरे लिए, और मैं अकेले ट्रेवल कर रही थी, मना बाबा ही साथी था ऐसे कहेंगे, और ऐसे बाबा ने हमें टेस्ट पेपर हुआ और मैंने बिल्कुल भी अपने आप को हलचल में नहीं आने दिया उस समय कि बाबा है, जो भी होगा अच्छा होगा, और सचमुच उससे हम पार हो गए। ऐसे ही भारत में एक बार हुआ हमारे साथ। भारत में हम सफर सेवा से आ रहे थे तो ईस्टर्न साइड में गए थे सेवा में, तो यहाँ तो लंबा पड़ता है तो फ्लाइट से ही आना था। वहां भी कनेक्टिंग फ्लाइट थी तो बोर्डिंग पास लेकर के बैठे थे वहां पर एयरपोर्ट पर। जो गेट अनाउंस हुआ था, जो गेट लिखा हुआ था बोर्डिंग पास पर, हम वहीं बैठे थे। लेकिन हुआ ये कि गेट चेंज हो गया और उन्होंने अनाउंस नहीं किया। कई एयरपोर्ट साइलेंट होते हैं, वो अनाउंस नहीं करते, मैसेज दे देते हैं। तो हमने ध्यान नहीं दिया, वो मैसेज नहीं देखा, पता नहीं चला। तो मैं ये देख रही थी कि अभी तक फ्लाइट लगी नहीं है, बोर्डिंग का टाइम हो गया, फ्लाइट लगी नहीं है। तो मैंने सोचा लेट हो गई होगी, कई बार लेट हो जाती है फ्लाइट, तो बैठे रहे वहीं पर और ज्यादा कुछ सोचा नहीं। और फिर प्लेन उड़ने का भी टाइम हो गया, तब तक भी वो फ्लाइट नहीं लगी थी। पर इतने में मेरे पास फोन आया, क्योंकि जब हम टिकट बुक करते हैं तो अपना फोन नंबर हमें देना होता है। तो मेरे पास फोन आया कि मैडम आप कहीं भी एयरपोर्ट पर हैं तुरंत इस गेट पर पहुंच जाइए, बोर्डिंग क्लोज होने वाली है, फ्लाइट उड़ने वाली है। तो मैं एकदम उसमें मैं कहूंगी कि आश्चर्य हुआ मुझे कि ऐसा कैसे, हम तो यहीं बैठे हैं, हम तो फ्लाइट लगी नहीं है। तो वो बताया उन्होंने कि गेट चेंज हुआ, शायद आपको पता नहीं चला, आप तुरंत आ जाइए। तो मेरे साथ एक भाई भी थे, हम तुरंत वहां से उठे और उस गेट पर पहुंचे। लेकिन हुआ ये कि जल्दी जल्दी में मेरा एक बैग वहां रह गया और उस बैग की जेब में ही बोर्डिंग पास था। तो वहां पहुंचे तो पता चला कि बोर्डिंग पास नहीं है। अब एंट्री कैसे हो, बिना बोर्डिंग पास के तो एंट्री नहीं होती है। तो ये देख के वो जो बहन खड़ी थी वहां वो करा रही थी एंट्री, वो गुस्से में आ गई। उसने कहा अभी आपका कुछ नहीं हो सकता, अभी आपकी फ्लाइट नहीं मिलेगी आपको। मैंने कहा एक मिनट लगेगा, मैं लेकर के आ जाती हूँ। उसने कहा कि नहीं, गेट क्लोज हो रहा है, आप यहीं रुक जाओ। सो उन्होंने हमको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया और वो बोर्डिंग गेट क्लोज हुआ और फ्लाइट जो है वो चालू हो गई, रनवे पर जाती है तो वो चालू हो गई। तो मैंने सोचा ठीक है, अब ये तो मिस हो गई हमारी फ्लाइट। तो फिर मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो यहाँ एक घंटे से बैठे हैं, अब पता नहीं चला ये गेट चेंज हो गया, ये सब अचानक हुआ है। वो कलकत्ता से थी, वाया कलकत्ता हमको आना था। तो मैंने कहा अब आप जानो कैसे कलकत्ता पहुंचाना है। तो कलकत्ता की जो फ्लाइट थी उसमें गैप था, तो हम अगर कलकत्ता भी पहुंच जाते तो हमें अहमदाबाद तक वो मिल जाती, ऐसे बोल के। और फिर मैंने कुछ नहीं सोचा उसके बाद कि बाबा को पहुंचाना होगा तो ठीक, नहीं तो फिर हम कोशिश करते हैं अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो मैंने उसी से पूछा बहन से कि आपकी एयरलाइन की कोई नेक्स्ट फ्लाइट है आधे घंटे के अंदर जो जाने वाली हो, या कोई और एयरलाइन की आपको पता हो तो हमें बता दीजिए, हम नया टिकट लेकर के हम जाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि आप रुको मैं आपको बताती हूँ। तो हमने सोचा ये बताएंगी, तो उसने हमको अपने साथ ले लिया और अपने ऑफिस में ले गई, एयरलाइन ऑफिस में ले गई। उसने कहा आप थोड़ा वेट करो, मैं 10 मिनट के बाद आपसे बात करती हूँ। तो ठीक है, तो हम बैठ गए वहां और उन्होंने क्या बातचीत की वो मुझे नहीं मालूम। फिर वो आई और उन्होंने कहा आप मेरे साथ साथ आओ, तो हम उनके साथ जाने लगे। तो वो सब टोटल सब कुछ बाईपास कराते हुए हमको ले गई, माना फिर से चेक इन हुआ, फिर से सारा सिक्योरिटी चेक हुआ, लेकिन लाइन में नहीं खड़ा होने दिया उसने। जैसे वो हवाई जहाज वाले होते हैं, स्टाफ होता है, वो स्टाफ जो है वो सीधा सीधा उनका सारा हो जाता है, ऐसे ही उसने हमारा सारा कराया और बोर्डिंग गेट तक ले आई। तो मैंने सोचा शायद इसने दूसरी फ्लाइट, इन्होंने समझा होगा हमारी जिम्मेवारी है, हमारे पैसेंजर हैं, तो दूसरी फ्लाइट में हमें बिठाने के लिए लाई होगी, ऐसे मैंने सोचा। तब तक उसने हमें कुछ बताया नहीं। फिर बोर्डिंग गेट पर आने के बाद वहां बैठने नहीं दिया उसने, उसने कहा आप मेरे साथ आओ, और सीधा वो वहां एयरपोर्ट पर ले आई। तो देखा कि वही फ्लाइट जो हमको छोड़कर चली गई थी वो वहां खड़ी थी और हम उसमें बैठे। तो मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, कहां एक मिनट उसने नहीं दिया हमको कि बोर्डिंग पास हम ले आए और चढ़ जाएं, और कहां अब आधा घंटा हो गया और वही फ्लाइट घूम करके आई है हमें पिकअप करने के लिए। तो ये किसकी कमाल हुई। बाबा को बोला, बाबा पर छोड़ा, बाबा ने कैसे उनकी बुद्धि को बदला और वो हमको लिया। और मैं हम जब प्लेन में चढ़े तो लोग हमें देखने लग गए, क्योंकि हम कोई ऐसे वीआईपी तो थे नहीं जो फ्लाइट रनवे से हमारे लिए वापस आ जाए। लेकिन ऐसा करिश्मा हम कहेंगे वो हुआ, और वो बहुत ही मुझे आश्चर्य हुआ उस दिन जो ये सब घटना हुई और हम टाइम पर कलकत्ता पहुंचे और हमारी जो यात्रा है वो हुई पूरी। तो कहने का भाव ये है कि बाबा पर अगर हमें पूरा भरोसा है तो बाबा की मदद हमें मिलती है और उस परिस्थिति से हम पार हो जाते हैं। हम ब्रह्मा बाबा के बारे में हम सब जानते हैं। बाबा जो थे अपने लौकिक जीवन में बहुत सम्मानित थे। बाबा का बहुत रॉयल बिजनेस था। बाबा जो है सभी राजाओं महाराजाओं के पास जाते रहते थे, बाबा का जो हीरे जवाहरात का बिजनेस था उसके कारण। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रविष्टता हुई सब कुछ बदल गया। वही जो समाज इतना सम्मान करता था बाबा का, उस समाज ने ही बाबा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कितनी गालियां खाई बाबा ने उसके कारण, लोगों ने पिकेटिंग की, बाबा को कोर्ट तक भी लेकर के गए, ओम मंडी को कोर्ट में भी जाना पड़ा, मारने की भी कोशिश की गई, जान से भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन बाबा कभी हिले नहीं, क्योंकि पूरा निश्चय था ये भगवान का कार्य है और बाबा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करा रहे हैं, तो बाबा जिम्मेवार हैं, क्योंकि बाबा का कार्य है। और इसीलिए कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आती रही लेकिन बाबा के निश्चय और नशे में कोई अंतर नहीं आया। और वो हम सब दादियों का भी सुनते हैं, कैसे कैसे वो सब यज्ञ में आए, कितनी मुश्किलों का सामना उन्होंने किया, लेकिन वो मुश्किलें उनको मुश्किलें लगी नहीं। फिर बेकरी पार्ट भी चला, जब भारत में आए उस समय खाने को नहीं होता था, एक टाइम खाते थे, तीन टाइम नहीं खा पाते थे, एक ही टाइम खाते थे, बाकी टाइम जंगलों में जो फल लगते थे वही उनका नाश्ता होता था। हम सब सुनते हैं ये सब, बाबा की कहानियां हमने सुनी। तो कितने यज्ञ से चले गए, जो थे जो समझते थे कि हम कमा सकते हैं खा सकते हैं, तो यहाँ हम बेगरी पार्ट ये पता नहीं कब तक चलेगा, क्या पता ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। जो संशय में आए, थोड़ा भी संशय में आए, वो यज्ञ छोड़कर चले भी गए। तो ऐसे ही एक मिसाल हम सुनते हैं, वो आटा नहीं था, वो तो हम सब जानते हैं कैसे वो आया, मनी ऑर्डर आया। एक और घटना बेगरी पार्ट में हुई कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते थे, कभी भी कर लेते थे, जब भी कोई बच्चों से मिलना होता था, बाबा को कोई डायरेक्शन देने होते थे। तो होली आने वाली थी, तो शिव बाबा ने बाबा के द्वारा कहा कि बच्चों को होली पर जलेबी का भोग खिलाना है। तो जब जो भंडारा संभालती थी बहन, उसने सुना तो वो बाबा के पास आई, उसने कहा कि बाबा न तो मैदा है, न तेल है, न चीनी है, कैसे बनेगी जलेबी? तो आपने कैसे कहा कि बच्चे जलेबी का भोग खाएंगे? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये ऑलमाइटी बाबा ने कहा है, तो अगर बाबा को खिलाना है तो बाबा खिलाएगा, बाबा ने कहा, तुम निश्चिंत रहो। तो ठीक है, उसने कहा, बाबा ने कहा, वो निश्चिंत हो गई, जैसे भी खिलाना होगा। अब हुआ ये कि वहां एक सिंधी परिवार रहता था, ब्रिज कोठी की बात है, सिंधी परिवार रहता था वहां पे, और वो जो बहन थी उसकी बाबा में बहुत भावना थी, लेकिन पति विरोधी था। तो उसकी इच्छा होती थी कि मैं यहाँ जाकर के ब्रह्मा कुमारी बहनों को कुछ मदद करूं, लेकिन वो पति पैसा नहीं देता था उनको, कहता था तेरे को कहीं और देना है तो मेरी मना नहीं है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं देना है। और हुआ ये कि बाबा ने उस दिन रात को 2 बजे योग रखा था, जैसे योग भट्टी रखते हैं बीच बीच में, है ना, आज आप लोगों की भी योग भट्टी होने वाली है। तो ऐसे बाबा ने योग रखा और रात को भाई बहने सब योग में बैठे थे। वो जो भाई थे जो विरोधी थे, वो जिस गुरु को मानते होंगे या इष्ट को मानते होंगे, जो भी है, मतलब उनको सपने में कुछ दिखाई दिया और सपने में उनको कोई डायरेक्शन मिला, तो उनकी नींद खुल गई। और नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सामने लाइट चल रही है और भाई बहने बैठे हैं, तो पता तो था उनको कि ये योग करते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया उसी समय और कहा कि तू मेरे को हमेशा कहती ना मुझे यहाँ कुछ देना है, तो वो अलमारी में पैसा रखा है, जो भी पैसा उनको भिजवाना था ये इतना पैसा निकालो और अभी देकर आओ। तो वो बड़े आश्चर्य में आ गई, उसने कहा कि अभी आधी रात को, सुबह देकर आ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी जाओ। तो बोला आप अभी जाने को क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा कि अगर सुबह तक मेरा मन बदल गया तो, इसलिए अभी निकालो और अभी जाओ। तो बहन ने उसी समय पैसा निकाला और वहां देकर के आई। और उसके अगले दिन होली थी, उस दिन ही सारा सामान आ गया, क्योंकि वो पैसा देकर आई तो सारा जो भी चाहिए था सामान खरीदा गया और जलेबी बनी। तो कहने का भाव क्या है, बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो कब किसको टच कर देगा और कब जो असंभव कार्य है वो संभव हो जाएगा हम कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी बाबा हमें ये नहीं कहते कि हमें चमत्कार को नमस्कार करना है। बाबा हमें रिद्धि सिद्धि और चमत्कार नहीं सिखाते, लेकिन विधि से हमारी सिद्धि होती है, यानी हमें योग बल का प्रयोग करना है। जो कहा, जो बाबा से हमारा संबंध है, वो संबंध जितना मजबूत होगा, वो संबंध बाबा से हमारा जितना समीप होगा, उतना हम ऐसे अनुभव करेंगे। और सेंटर पर रहने वाली हमारी बहनें तो ऐसे कितने अनुभव करती हैं कि कैसे बाबा कमाल करता है। सेवाओं में भी कई बार ऐसा होता है कि सोचते हैं कैसे ये सेवा कैसे होगी, इतना बड़ा खर्चा है इसके पीछे, या हम सोचते हैं हम ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं कैसे हो सकता है, लेकिन वो कैसे रास्ता बनता है पता नहीं चलता। बस संकल्प शुद्ध है, दिल सच्ची है, तो वो सब हो जाता है जो हमने सोचा है। इसमें भी मेरा एक अनुभव है, मैं शुरू शुरू में जैसे ही मैंने मेडिकल पास किया तो मेरी पोस्टिंग हुई थी एक छोटे कस्बे में, फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी। तो वहां का सेंटर था, तब मैंने निश्चय किया कि मैं सेंटर पर रहकर देखूंगी। मैं तो सीधा कॉलेज से आई और ये मेरी ट्रायल थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी लाइफ में सेंटर पर रहकर देखूं तो मुझे कैसा लगता है, तो मैं अपने भविष्य का निर्णय ले सकती हूँ। तो मैं हॉस्पिटल भी जाती थी और वो सेंटर जो था छोटा सा सेंटर था, एक ही कमरे का, एक कमरा एक किचन, मतलब जैसे कि एक ही बहन रहती थी वहां पे और मैं गई, तुम समझो मैं दूसरी बहन हो गई। और स्टूडेंट के नाम पर तीन चार भाई बहने आते थे वहां पर। तो वहां पर 3 महीने की मेरी पोस्टिंग में एक रैली आई, वो यूथ रैली थी, और रैली में 8-10 भाई बहने आने वाले थे। और ये कहा गया, जो भी जोन था उस कनेक्शन का, उनको कहा गया, बहन को आपको एक प्रोग्राम करना है यूथ का, और ये भाई बहने जो है वो एक दिन रहेंगे, तो इनके रहने का प्रबंध, खाने का प्रबंध, ये भी सब करना है। और वो सेंटर क्या था, हैंड टू माउथ था, मतलब इतना कुछ खर्चा नहीं कर सकते थे। तो ये सारी बात हुई, उसने मुझे कहा कि ऐसे से रैली आ रही है तो बाबा की सेवा होगी, चाहते तो हैं सेवा हो लेकिन मुश्किल है हमारे लिए, कैसे करेंगे, क्योंकि भाई बहने तो बहुत साधारण से थे, तो कोई इतना खर्चा नहीं कर सकते थे। तो ऐसे ही हमने फिर शाम को बैठ करके योग लगाया। नेक्स्ट डे वहां का एक बिजनेसमैन थे, वो कहीं दूसरे शहर में रहते थे लेकिन संपर्क में थे, और उस समय वो वहां आए, वो कस्बे, अपने कस्बे में जैसे अपने गांव में लोग आते हैं, तो वहां आए वो, और वो सेंटर पर बहन से मिलने के लिए आए। और बहन को उन्होंने कहा मिलने के बाद कि बहन जी कोई सेवा हो तो हमें बताना। तो बहन जी ने कहा आपने अच्छे समय पर ये बात कही, हमें सचमुच आपकी सेवा की जरूरत है। उसने कहा क्या सेवा है? तो उन्होंने कहा कि ना जो सो एंड सो डेट पर हमारे यहाँ रैली आने वाली है और वो रैली में उनके रहने खाने का प्रबंध, उनके प्रोग्राम के लिए हॉल बुक करना, प्रोग्राम अरेंज करना, ये सब कुछ करना है। तो उसने कहा, अरे ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं तो ऐसे कार्यक्रम करता रहता हूँ, आप जरूर करो। और हुआ ये कि सारा खर्चा जो है वो उन्होंने उठाया और वो प्रोग्राम कैसे हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो कहने का भाव क्या है, मेरे लिए तो ये इतना आश्चर्य की बात थी क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी उस समय और ये मेरे लिए अनुभव बिल्कुल नया था। और मैंने बिल्कुल अनुभव किया कि कैसे बाबा ने अपना कार्य कराया, कैसे बाबा ने उस आत्मा को टच करके वहां भेज करके वहां भेजा। और हम सोच रहे थे क्या होगा कैसे होगा, एक बार संकल्प तो चला जब प्रोग्राम मिला कि कैसे करेंगे, हाँ लेकिन कार्य तो बाबा का है ना, तो बाबा का कार्य है तो बाबा ने किसी को निमित्त बनाया और वो कार्य सहज हो गया। हम दादी जानकी का सुनते हैं, हमारी दादियों के तो ऐसे बहुत अनुभव है, दादी जानकी को जब बाबा ने विदेश भेजा तो दादी को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो दादी ने बाबा को यही बोला कि बाबा मैं तो ये भाषा जानती ही नहीं हूं, मैं क्या सेवा करूंगी विदेश में। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम जाओ वहां मधुबन बनाना, मधुबन का वातावरण बनाना, बस यही सेवा आपको करनी है। बाबा की श्रीमत थी तो दादी गई, मतलब जिसको हम कहेंगे कि एक बल एक भरोसे के आधार पर दादी विदेश गए। और वहां पर दादी किसी को ज्ञान नहीं सुनाती थी, दादी सिर्फ साइलेंस में योग में, वो वहां का जो सेंटर का वातावरण था वो वातावरण दादी बहुत पावरफुल रखती थी। और कोर्स जो है वो जयंती बहन या जो भी भारत से बहने जाती थी उस समय, क्योंकि वो लंदन में ही थे तो वो बहने कराती थी और फिर दादी उनको दृष्टि दे करके योग कराती थी। और उस योग की अनुभूति से ही उस समय इतनी पावरफुल विदेश की आत्माएं निकली जो आज कई देश संभाल रही हैं ना, वो जो आदि रतन, विदेश के आदि रतन हम कहेंगे जो निकले। और सिर्फ वो लंदन नहीं, कितना फास्ट गति से विदेश में सेवाओं का विस्तार हुआ और आज हम कहते हैं 140 देशों में बाबा के सेंटर हैं। और किसने शुरुआत की, किसने नींव डाली, जिसे भाषा भी नहीं आती थी, लेकिन किसके निश्चय के आधार पर, किस भरोसे के आधार पर, एक बाबा पर जो भरोसा था, निश्चय था, उसने कितनी बड़ी विजय दिलाई। तो बाबा जो है वो हमारे माता पिता के रूप में, जितना हम बाबा के ऊपर छोड़ते हैं बाबा हमें उतना हल्का रखते हैं और हम सहज आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा हमारा शिक्षक भी है, परम शिक्षक है, दुनिया में ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है। जैसी पढ़ाई बाबा हमें पढ़ाते हैं और यही पढ़ाई हमारी 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध का आधार है। जैसे कहा ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो इस समय तो ज्ञान धन है लेकिन वो सत्युग त्रेता में स्थूल धन में परिवर्तन हो जाता है, यानी हम पद्मा पदम पति बन जाते हैं, कोई भी गरीब नहीं होता। बाबा कहता है सत्युग त्रेता में सब इतने संपन्न होते हैं कि जितना आवश्यकता के लिए चाहिए उससे कई गुना अधिक धन सभी के पास होता है। और सिर्फ दो युग नहीं, 3/4 कल्प बाबा कहता है हम सर्व भाग्य प्राप्त करते हैं। दुनिया में भी पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, ऊंचा पद पाते हैं, अच्छा कमाते हैं, वो अच्छा क्वालिटी का जीवन जीते हैं। लेकिन ये जो पढ़ाई है, आज भी बाबा ने कहा ना कि ये पढ़ाई हमें राजाओं का राजा बनाने वाली है, ऐसी प्राप्ति और किसी पढ़ाई से नहीं होती, और कोई पढ़ाई हमें राजा नहीं बनाती है। ये जो पढ़ाई है वही हमें मनुष्य से देवता बनाती है। तो ऐसा शिक्षक हमारा है बाबा, सद्गुरु के रूप में रोज हमें जो वरदान देते हैं वो वरदान मुश्किलों को आसान करने वाले हैं। जैसे दुनिया में भी गुरु के पास जाकर आशीर्वाद मांगते हैं, क्यों आशीर्वाद मांगते हैं, कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो बिना मेहनत के, बिना कोई दुख दर्द के हम उन्हें पार कर लें। गुरु की आशीर्वाद, गुरु की दुआएं हमें मिल जाएंगी तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, आसान करने के लिए वरदान होते हैं। तो बाबा ने भी हमारे जीवन को कितना आसान किया है, भले ही हमारी धारणाएं बहुत ऊंची हैं। दुनिया वाले तो इसे असंभव ही समझते हैं। आज हम सभी सुबह अमृत वेले उठते हैं, 4 बजे उठते हैं हम, कितना प्यार से हम उठते हैं, बाबा को याद करते हैं। और दुनिया वाले कितने बजे उठते हैं? 8 बजे से पहले नहीं उठते। छुट्टी वाला दिन होगा तो 10 बजे से पहले नहीं उठते, और उनको बता दो 4 बजे तो हमारा मुंह देखने लग जाते हैं, 4 बजे कैसे उठ सकते हैं, और हमारे लिए मुश्किलें या आसान है? तो ये किसका वरदान, किसकी शक्ति है? फिर हम जो पवित्रता की धारणा करते हैं इस कलयुगी दुनिया में, दुनिया उसे असंभव समझती है कि घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे पवित्र रह सकते हैं। वो तो गुरु भी नहीं कहते, संत भी नहीं कहते, सन्यासी भी नहीं कहते, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए सहज है या मुश्किल है? शुद्ध भोजन हम खाते हैं। आज की दुनिया में तो लोग खाना पीना, मौज करना, घूमना, इसको ही जीवन समझते हैं। बाहर जाके होटल में खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, यही तो लाइफ है, नहीं तो लाइफ क्या जी रहे हो, ऐसे सोचते हैं। या जो भी फिल्म देखना, या कोई ना कोई प्रकार के व्यसन जो भी हैं, उसको वो मॉडर्न लाइफ बना सिंबल मानते हैं उसका। और हम भोजन कैसा करते हैं? रमा भोजन खाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं। तो हमारे लिए मुश्किल है या आसान है? या हमारी बुद्धि जाती है कि हम भी जाकर रेस्टोरेंट में थोड़ा खाके तो देखें, रेस्टोरेंट का भोजन कैसा होता है? जाती है बुद्धि? कभी इच्छा होती है ना, कितना भी अच्छा भोजन हो लेकिन हमारी वृत्ति नहीं जाएगी, क्योंकि बाबा ने हमें उसका महत्व बता दिया। तो ये धारणाएं क्यों आसान हो गई आज की दुनिया में, जिसे लोग मुश्किल समझते हैं? क्योंकि बाबा के वरदान है हमें, वो वरदान हमें शक्ति देते हैं कि यही जीवन हमें प्यारा लगता है, ये धारणाएं ही हमें अच्छी लगती हैं, वो जीवन हमें नहीं अच्छा लगता। और आज भी बाबा ने कहा कि हंस और बगुले साथ नहीं रह सकते हैं। इसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा ना कि बाबा के बच्चे जो हैं वो जो नहीं चले, तो बाबा ने कहा तुम अपनी राह लो, वो नहीं साथ में रहेंगे। तो बाबा ने हर दिन, आज भी मुरली में हमें वरदान मिलता है, बस उन वरदानों को हमें स्मृति का पानी देना है, तो वो हमें समर्थ बनाते हैं। जो भी सोमान है वो भी हमारे लिए वरदान है। सही बाबा हमारा साथी है, दोस्त है, साजन है। हम कहते हैं तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग बात करूं, एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा हमारे जीवन का आधार है, बाकी सब जो संबंध है वो सेवा के संबंध है। जो आज भी हमने वरदान में सुना कि हमारे सर्व कर्म बंधन कर्म संबंध में बदल जाते हैं, क्योंकि वो सेवा के संबंध हो गए। अब वो मेरा मेरा नहीं है, ये मेरा फलाना है, मेरा फलाना है, वो नहीं। कौन है? मेरे हैं या बाबा के हैं? बाबा के हैं, और इनके निमित्त बाबा ने मुझे रखा है। तो सारा बाबा ने मेरेपन का बोझ हमसे हल्का कर दिया। मेरे बच्चे हैं, मेरा कहना नहीं मानते, ऐसा नहीं करते वैसा। कितने दुखी रहते हैं दुनिया में लोग, इन्हीं बातों को लेकर के कि मेरे हैं, इतनी अपेक्षा होती है उनसे, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुखी रहते। और हमें बाबा ने दाता बना दिया, अपेक्षा नहीं रखनी है। जो हमारे संबंध है, बाबा कहते ना 4 प्रकार के निश्चय होते हैं हमारे। पहला निश्चय है बाबा में निश्चय, वो तो हम सबको है, उसमें हम सब 100% हैं, 100% से भी ज्यादा होंगे। दूसरा निश्चय है स्वयं में निश्चय, ना बाबा जो है जैसा है वो हमने जाना, तो मैं भी जो हूं जैसा हूं वो हमें जानना है, मानना है और चलना है। तो मैं आत्मा हूं वो ठीक है, लेकिन आत्मा के साथ साथ मैं कौन सी आत्मा हूं, तो वो जो सम्मान और सम्मान बाबा ने हमें दिया वो स्वीकार करते हुए अपने आप पर निश्चय रखना कि मैं वही मास्टर सर्वशक्तिवान या कल्प पहले वाली बाबा की चुनी हुई आत्मा ब्राह्मण कुलभूषण जो भी हमारे सम्मान है वो मैं आत्मा हूँ। फिर तीसरा निश्चय हमें ड्रामा में निश्चय कि ड्रामा में जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है, उसमें हमारे लिए कोई अकल्याण हो ही नहीं सकता। होता है ना कई बार हम ज्ञान में आए और ज्ञान में आने के बाद ऐसी परिस्थितियां आने लगी जो कभी अज्ञान में भी नहीं आई। बिजनेस कर रहे हैं, ज्ञान के पहले हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था क्योंकि हम जैसे दुनिया वाले लोग बिजनेस करते हैं, जो भी कहते हैं ना कि बिजनेस कैसे चलता है, प्रॉफिट कैसे होता है, थोड़ा बहुत उसमें हेरा फेरी तो करनी ही पड़ती है, तो वो सब हम भी करते थे और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। फिर ज्ञान में आ गए तो ज्ञान युक्त रीति से थोड़ा बिजनेस करने लगे तो घाटा होने लग गया। क्या बिजनेस में कई बार भारी लॉस भी हो जाता है। हाँ, या नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी कुछ कर रहे थे तो उसमें कुछ ऐसा हो गया कि जो है नौकरी चली गई या नौकरी से कई बार सस्पेंड कर देते हैं, कई ऐसी बातें हो जाती हैं। वो हुआ ज्ञान में आने के बाद, तो लोग क्या कहना शुरू करते हैं, यहाँ ही हमारे निश्चय की परीक्षा होती है। बाबा पेपर तो लेता है ना, तो लोग कहते हैं देखो आप पहले वो जो भक्ति पूजा पाठ करते थे ना, वो गुरु के पास जाते थे, आपके रिश्तेदार शुरू हो जाते हैं, मित्र शुरू हो जाते हैं, वो आपने सब छोड़ दिया ना, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप नहीं छोड़ते तो सब अच्छा चलता रहता जैसे पहले अच्छा चल रहा था। तो हमें भी थोड़ा संशय आने लग जाता है, कहीं सही बात तो नहीं है, हाँ सचमुच मैंने भक्ति करना तो छोड़ दिया, कहीं देवता नाराज तो नहीं हो गए, देवता नाराज हो गए ना इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ये जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, हमें पता है कि ये 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है, वो किसी ना किसी रूप में तो हमारे सामने आएगा ना। तो वो अगर हमारे सामने आया है और बाबा पर हमारा भरोसा है तो हम वो परिस्थिति से भी निकल जाएंगे। कोई हमेशा ही एक जैसी स्थिति थोड़ी रहती है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है। आज अगर कहीं कुछ कमी हुई है तो कल हम आगे भी बढ़ सकते हैं, उससे भी अच्छा हो जाता है कई बार। एक बार ऐसे बताते हैं किसी व्यक्ति की दुकान चल गई, तो पूरा दुकान चली तो पूरा जो दुकान में माल था वो भी सब जल गया, लाखों का नुकसान हो गया। तो किसी ने उसको कहा अरे तुम्हारी दुकान जल गई अब क्या होगा तुम्हारा, तो उसने कहा कि ये मेरी दुकान जली है लेकिन मेरा आत्मविश्वास नहीं जला है, मैं फिर से अपनी दुकान खड़ी कर लूंगा। तो हमारे साथ तो बाबा है। हाँ, जब दुनिया में लोग अपने ऊपर इतना विश्वास करके कह सकते हैं तो भगवान जो सर्व समर्थ है, जो सर्व शक्तिवान है, वो हमारे साथ है, तो वापस सब कुछ क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो हाँ, मैं एक जानती हूँ, एक अफसर थे और उन्होंने यहाँ मधुबन में आकर के कोर्स किया। कोर्स के बाद वो ज्ञान में चलने लगे और बहुत लगन, माना उनको लगता था कि बहुत कम समय में मुझे बाबा का सारा ज्ञान मतलब हो जाए, मैं किसी भी उससे वंचित ना रहूं। तो हर बाबा का टर्न, उस साल जो भी बाबा का टर्न था, हर बाबा के टर्न में आना, इतनी दूर से बाबा मिलन करके जाना, वो सब वो करते थे बहुत एकदम लगन से, बहुत तीव्र पुशार जिसे हम कहेंगे, वो उन्होंने एक साल किया। और हुआ ये कि अगले साल, अब जो ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, तो उनको कई फाइलें वगैरह साइन करनी होती हैं और उसके पीछे कुछ लोग लेन देन भी करते हैं, तो उनको फंसा दिया उसमें। अब कोई होंगे आपस में स्टाफ में होते हैं, कोई एक दूसरे ईर्ष्या करने वाले भी होते हैं, तो उनके ऊपर ऐसा कुछ आरोप लगाया या जो भी उन्होंने देखा होगा कि वो ज्ञान में आने से पहले बहुत धार्मिक थे, बहुत दान पुण्य करते थे, कुछ मंदिर वगैरह भी उन्होंने बनवाए, लेकिन ज्ञान में आने के बाद ये सब चीजें नेचुरली हम समझ जाते हैं तो ये फर्क पड़ जाता है, तो उन्होंने वो सब करना बंद कर दिया। जो भी हुआ, मतलब उनकी नौकरी से वो आरोप जो है वो मतलब सिद्ध करके उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया। और वही बात शुरू हो गई कि उनके रिश्तेदार बोलना शुरू कर दिए, अरे पहले आप इतना करते थे, ये सब आपने बंद किया ना, इसीलिए आपके देवता नाराज हो गए और ऐसा हुआ आपके साथ। तो लेकिन बाबा कहता है हमें कोई भी परिस्थिति जो हमें लगता है हमारा जीवन में नुकसान हो गया या हमारी हार हो गई, जो भी हुआ हम असफल हुए, लेकिन उसमें भी कल्याण है। जो भी परिस्थिति है वो हमें अनुभवी बनाती है, वो हमें मजबूत बनाती है, वो हमें आगे बढ़ाती है ना। वो पेपर है और अगर हम एक बार उस पेपर से पास हो गए, पास विद ऑनर, केवल पास नहीं, अगर हम अच्छल अटल अडोल रहते हैं ऐसी स्थितियों में भी हम पास विद ऑनर हो जाते हैं। मानो उन्होंने वो टाइम क्या किया, फिर जो उनके ज्ञान की उनके जो ज्ञान की लगन थी, वो बताया ना, जैसे कि उनको लगता था मेरा कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, अब टाइम नहीं मिलता था क्योंकि बहुत टाइम ऑफिस में चला जाता था, तो सस्पेंड होने के बाद क्या हुआ, टाइम मिला तो उन्होंने वो टाइम पूरा उसमें यूटिलाइज किया कि जो भी बाबा की लिटरेचर है, जितना भी ज्ञान है, जो भी मूल्यां चली आज तक, वो सब मुझे स्टडी करना है। तो वो सारा उन्होंने वो स्टडी किया, तो बाबा ने मुझे जैसे वो टाइम दे दिया। तो एक देखने में दुनिया के हिसाब से तो बहुत नुकसान हो गया, और उनकी रीति से उनका भला हो गया कि जिस लाइन में हम आगे बढ़ना चाहते थे बाबा ने हमें वो समय दे दिया।